लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति, ओम शांति। अरावली पर्वतमाला की वह श्रृंखला जिसे स्वयं प्रकृति ने अपने हाथों से सवारा है और अभी वर्षा ऋतु ने धोकर उसको निखारा भी है, ऐसे स्वर्गनुमा प्राकृतिक वातावरण में मधुबन पावन भूमि धाम में आप सभी होली हंस प्रभु रतन बेहद वैराग्य वृत्ति और अंतिम पुरुषार्थ योग तपस्या भट्ठी करने आए हैं, ऋषियों की तपस्या भूमि नाम से प्रसिद्ध एवं बाबा मम्मा और दादियों जैसी महान कर्मयोगी पवित्र आत्माओं की कर्म भूमि पर तपस्या का अवसर मिलना हमारा महान सौभाग्य है। ऐसे शुभ अवसर पर शिव बाबा, मम्मा बाबा, दादियों, दादाओं, आदरणीय शशि दीदी, शिलू दीदी, हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी और मधुबन निवासियों की तरफ से आप सभी राजयोगी ब्रह्मा वर्षों का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। इस सुअवसर पर हमारे बीच पहुंचे हैं आदरणीय सुदेश दीदी जी, हम सभी आपका एक हाथ की ताली से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वर्तमान में आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका होने के साथ ही माउंट आबू के एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर और जर्मनी स्थित सेवा केंद्र की निदेशिका भी है। आपका लौकिक जन्म 1942 में हुआ। बचपन से ही आपके अंदर सेवा भाव और संस्कार भरे हुए थे। आपने अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की है। वर्ष 1957 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आकर आपने महसूस किया कि मानवता के प्रति आध्यात्मिक सेवा करना ही सच्ची सेवा है। अपनी ओजस्वी वाणी के साथ आपने समग्र भारत सहित कई देशों का परिभ्रमण कर अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने का गौरव प्राप्त किया है। आपने 75 से भी ज्यादा देशों की यात्रा करके जीवन में आध्यात्मिकता का व्यावहारिक महत्व सिद्ध किया है। वर्ष 1974 में विदेश में ब्रह्मा कुमारी संस्था का पहला सेवा केंद्र लंदन में खोलने का श्रेय आपको जाता है। राजयोग मेडिटेशन और विशेषकर मस्तिष्क की आंतरिक कार्य प्रणाली को अपने प्रभावशाली व्याख्यानों द्वारा आप अति कुशलता पूर्वक रोचक तरीके से स्पष्ट करते हैं। सकारात्मक सोच, तनाव मुक्त जीवन शैली, जीवन मूल्य और आंतरिक शक्ति की खोज जैसे विषयों पर आपने प्रभावशाली, ओजस्वी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए दीदी देश विदेश में अत्यंत मशहूर है। आपको साकार बाबा की पालना लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। साकार बाबा आपको ज्ञान की बुलबुल कहते थे। साकार मूल्यों में बाबा कहते थे कि सुदेश बच्ची ज्ञान में तीखी है। बाबा को ऐसी ही सर्विसेबल बच्चे चाहिए जिनको भगवान स्वयं याद करे। ऐसे अनुभव और धारणाओं की मूरत हमारे मध्य उपस्थित है, तो ऐसे अनुभवों की खान दीदी हमारे साथ अमूल्य ज्ञान रत्नों को साझा करते हुए हम सबको इस योग तपस्या पट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट करेंगे, जिससे हम सब भरपूर होकर यहाँ से जाए। आदरणीय सुदेश दीदी जी,
थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद। आप सबको देख करके, मिल करके सिर्फ खुशी नहीं पर हृदय से आनंद की लहर उत्पन्न हो रही है कि मुजफ्फरपुर वाले मुसाफरी करके भाग्यशाली आत्माएं भगवान की कर्म भूमि पर पहुंच गई हैं। मधुबन पहुंच गई है। सबका भाग्य ऐसा ही होवे जैसा आपका है। आपका ये बहुत सुंदर भाग्य है क्या आपको ड्रामानुसार मधुबन में भट्टी करने का चांस मिला है? बहुतों की एप्लीकेशन आई होगी, आपने क्या पुण्य कर्म किए? कौन से पुण्य कर्म का फल है? या प्रेम की रस्सी इतनी पावरफुल, लगन की अगन इतनी तेज, इच्छा इतनी बलवान कि आप सभी आत्माएं रामा ने आपको बाबा के घर में बुला के जो तपस्या 14 वर्ष कराची में हैदराबाद में चली और वो तपस्या की अग्नि माउंट आबू तक तपस्वी आकर के पहुंचे और इसी तपस्या भूमि पर ऑफिशियली यज्ञ की स्थापना में पांडव भवन हेडक्वार्टर्स है। बेशक बड़े बड़े भवन बन गए, मकान बन गए, स्थान बन गए, पर हेडक्वार्टर्स माउंट आबू है, पांडव भवन है। तो ये पांडव शिव शक्ति सेना का भाग्य कितना ऊंचा है। इसीलिए ऐसी भाग्यशाली आत्माओं को देख करके आपके मन का संकल्प गीत बजाने वाले में वाले ने वो रिकॉर्ड बजा के सुना दिया। आपने सुना? क्या लग सुना आपने? आपको लगन लगी थी ना? लगी लगन अब एक यही, क्या करना है? आपने तपस्या तो नहीं की, आपने तो कहा भट्टी में जाना है। किसी ने कहा हम तपस्या करने जाना है? आपने कहा भट्टी में मेरा नाम लिख दो, भट्टी में मैं मेरा नाम लिख दो। परंतु यहां तो तपस्या भूमि है। अब फर्क है, योग साधना मेडिटेशन भट्टी तपस्या तो तपस्या के लिए तपस्वी को पहले योगी बनना है। लगन लगी रहे, हृदय में लगन और प्रभु प्रेम में मगन लीन रहे, सागर की लहरों में लहराएं और वो अंदर के प्यार की लहर इतनी पावरफुल हो जो आत्मा को इतना तो पावरफुल बनाए जो ऊंचे वाले को सूर्य ज्ञान सूर्य को नीचे सागर और सूर्य एक होकर के आपकी सेवा करे। परंतु अभी भट्टी में तो बराबर भट्टी का लक्ष्य चाहिए, बताया कि लक्ष्य और लक्षण। तो मैं आपसे पूछती हूं आपका लक्ष्य क्या? आप कौन सी भट्टी में आए हो? आप मन में यही भावना रख के आए हो ना कि कुछ भी पिछला पुराना, कोई पुराने मन में संकल्प विकल्प व्यर्थ चिंतन परचिंतन दोष दर्शन किचरा कूड़ा किसी के संस्कारों का दाग वो खत्म हो जावे, तो जैसे कपड़ा व्हाइट पहना हुआ है अगर एक भी दाग लगा तो दिखाई पड़ेगा, काला कपड़ा नहीं पहना हुआ है। बाबा ने ड्रेस सफेद कपड़े की बनाई है, नीला काला पहना हुआ हो तो कितने भी दाग लगे वो दिखाई नहीं देंगे। पर स्वच्छ स्वच्छ मन जब हो गया तो एक व्यर्थ संकल्प भी अंदर, जैसा मन का संकल्प है चेहरा दिल का दर्पण है। संकल्प की वृत्ति, दृष्टि, वाणी, व्यवहार, वातावरण सारे में फैल जाता है, छिप नहीं सकता। जैसे बदबू छिप नहीं सकती, ऐसे खुशबू भी छिप नहीं सकती। खुशबू को कितनी भी छिपा के रखो, फूल को छुपा के रखो, और खुशबू आएगी जरूर। आप फल को भी जो है ना, आम को भी अलमारी में रख दो, देख तो कोई नहीं रहा, आम की खुशबू आएगी कि आम रखे हुए। घर में कुछ पकाएंगे, समोसा बनाएंगे, पकौड़ा बनाएंगे, दूर से आ जाएगा आज समोसा बन रहा है। यानी जो प्रैक्टिकल में विशेषता होती है वो वायुमंडल में आ जाती है। समोसा तालाब नहीं है तो आपको खुशबू नहीं आएगी। फूल खिला, खुशबू आने का वातावरण में खुशबू आ गई। तो मैं पूछती हूँ आपसे, आप पहले भट्टी में आए हो तो कौन सी भट्टी में पहले कौन सी भट्टी में अपने आप को डालना है? तो पहली भट्टी है धोबी की भट्टी। ये धोबी की भट्टी माना मैले कपड़े को साफ करना है। कोई भी मन की मैल है, मन में जैसे बाबा ने कहा, भले खुश रहना चाहते हो, कितनी भी इच्छा है, स्वर्ग स्थापन हम कर रहे हैं, हम तो स्वर्ग बनाएंगे, हम नई दुनिया लाएंगे, परंतु वो खुशी गायब हो जाती है। क्यों? सूक्ष्म संशय आ जाता है, दोष दृष्टि आई, संशय आ गया, किसी प्रकार का व्यर्थ संकल्प आया, व्यर्थ चिंतन चलने लगा। तो कोई भी पिछला, चाहे अपना चाहे दूसरे का, जो मन में बोझ या मन को बांध रहा है, बोझ है या बंधन है, वो न रहे, दाग न रहे, उसके लिए बाबा ने धोबी की भट्टी खोली है। धोबी की भट्टी, भट्टी भला एक अकेला कपड़ा क्यों नहीं धुलाई कर ले? वहां पर तो रोज कपड़ा, रोज योग करने जाते हो, ज्ञान सुनने जाते हो, पर भट्टी का मतलब एक कपड़ा, दो कपड़े, दस कपड़े नहीं, सारा ड्रम भरा हुआ इकट्ठा। यहां धोबी की भट्टी, बाबा की भट्टी, यहां पर अभी चक्की है, जाओ ना नीचे डाइनिंग रूम में, किचन में जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर भट्टी थी, आज से 65 साल पहले की बात है। बड़ा ड्रम था, जो भी अपने धोबी, कोई बाहर का धोबी नहीं होता था, अभी तो धोबी के घर से कपड़े धुलाई करते हैं, तब तो वही ड्रम पक्का भरते थे पानी का, उबलता था लकड़ियों से पानी, साबुन उसमें डाला, लट्ठे की चादर, कपड़े जो भी बिस्तरों के कपड़े, मोटे चदरे, छोटी चदरे, धुलाई होती थी, बाबा भी आके खड़े हो जाते थे, वो बाबा की एक ड्रेस देखी है ना, निकरा दी पहनी हुई है, धोबी की पट्टी, और कंस्ट्रक्शन का काम करते समय बाबा ने वो ड्रेस पहनी हुई, वो फोटो देखा होगा। तो बाबा कहते हैं मैं धोबी हूं, किस लिए तुम्हारे कपड़े धुलाई करता हूं, स्वच्छ बनाने आया हूं, पहले स्वच्छ बनाने आया हूं, पावन पीछे बनेंगे, पहले स्वच्छ बनेंगे, साफ होएंगे, तो साफ होएंगे तो फिर मैं रंगरेज की भट्टी खोल देता हूं, पहले धोबी की भट्टी फिर रंगरेज की भट्टी, तो ये इकट्ठा संग का रंग बाबा के साथ योग का लगा करके ये सप्त का संग आपस में एक दो के साथ इकट्ठा तपस्या करना और बाबा के साथ संबंध जोड़ के बाबा के संबंधों का जो गुण है उन गुणों का रंग, ज्ञान का रंग, शांति का रंग, प्रेम का रंग, पवित्रता का रंग, मैं तो रंग गई तेरे रंग में, वो मीरा की खाली बात नहीं है, वो गोपियों की बात नहीं है, वो ये गोप गोपियां हैं। अगर धोबी कपड़ा ऐसे ही धुलाई नहीं किया हुआ हो तो रंग रज को दे तो देंगे, वो कहेगा चलो धोया नहीं है, पर कहते नहीं भाई मुझे अभी जल्दी कर रंगवाना है, प्लीज डाल दो, रंग तो देगा वो, पर क्या कमी रह जाएगी, वो जो दाग है रंगने के बाद भी दाग में से दाग चमकेगा। बेशक भट्टी कर भी ली, सबके संग में भी आ गए, पर जब तक अपना मन स्वच्छ नहीं किया, बुद्धि का योग लगा करके अंदर शुद्धि नहीं आई, हृदय को शुद्ध नहीं बनाया, तो स्वच्छता के बाद शुद्धि आती है। शुद्ध यानी जो हमारी असलियत है वो जागृत होती है, जैसे शुद्ध घी यानी जिसमें मिलावट ना हो, तो हमने जो हमारे को मैल लगी थी वो हम उसमें बहाना ना बनावे, नहीं मेरा मन तो साफ था, मेरे मन में कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं है, पर अंदर गहरा लगा हुआ है, वो चोट गई नहीं है, वो माफ नहीं किया है, और माफ नहीं किया है दिल साफ नहीं होगा, करो माफ होवे दिल साफ, और जितना जितना वो साफ होता जाए, हृदय में शुभ भावना भर जावे, उसके प्रति बाबा ने कहा दुआएं देने का संस्कार हो जावे, क्षमा करके प्रेम के सागर बन जाओ, खाली क्षमा नहीं करो, रहम दिल बनो, तो वो क्षमा जो होगी आपको क्षमा बना देगी, आपको प्रभु का परवाना बना देगी, क्यों कि आपका फिर मन बुद्धि उस तरफ नहीं है, किसी की कमी का नहीं है, दोष का से दूषित होने था वो दूषित होना बंद हो गया, और आप ही क्षमा बन करके अपने कमजोरी को पहले अपने आप देखने लग गए। अगर दूसरे को देखते रहे तो बहुत बड़ी ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि दूसरे की कमजोरी को देखते अपनी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो प्रोग्रेस रुक जाती है, ईर्ष्यावश वो उनको ये मिल रहा है, उनको मान मिल रहा है, उनको शान मिल रहा है, उनकी महिमा हो रही है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। वो दूसरों को देखते देखते अपनी जो गुण शक्ति को व्यवहार में लाना चाहिए वो नहीं ला सकते। तो न केवल ब्लॉकेज होता है परंतु दूसरे की कमजोरी हमारी कमजोरी बन जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन से बचना है, बीमारी दूसरे की है पर स्वस्थ रहना है तो इन्फेक्शन से बचना है। इन्फेक्शन हो गया तो कनेक्शन टूट जाएगा, और कनेक्शन टूट गया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो पुरुषार्थ में आगे बढ़ने था वो बढ़ेंगे नहीं, वो रुकावट आ जाएगी। रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है। तो इसीलिए अपने आप को स्वच्छ भी बनाना है और माफ करके अपने आप को भी दूसरे को भी माफ करके हृदय को दया की भावना, प्रेम की भावना, कल्याण की भावना और अपने कल्याण की भावना एज वेल, तो स्वच्छ के बाद शुद्ध बनाना है। वो शुद्धि अंदर आएगी तो मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं। वो जो चिंतन मन का है, पर चिंतन के बदले स्वचिंतन हो जाएगा। वो जो बाहर मुखी हैं उसके बदले अंतर्मुखी बन जाएंगे। तो लक्ष्य यही है कि मेरे को ये सिर्फ मन को स्वच्छ नहीं करना है पर मन के साथ बुद्धि को भी स्वच्छ करना है, और बुद्धि के साथ संस्कारों को भी स्वच्छ करना है। पर संस्कार स्वच्छ हुए उसका सबूत क्या? उसका सबूत है कि मेरी दसों इंद्रियां स्वच्छ है। मैं दशरथ, राजा दशरथ, इस शरीर रूपी रथ को मैं साफ रखता हूं और हर मेरी कर्म इंद्री, ये पांच ज्ञान इंद्रियां, कौन सी ज्ञान इंद्रियां? आंख, इससे पता चलता है गोल्डन है कि रेड है कि सफेद है कि काला है। कान सुना, तो सुनते ही अंदर जो है वो व्यर्थ चिंतन चलने लगता है, गॉसिप। फिर वाणी, वाणी भी जो है बदल जाती, फिर व्यवहार बदल जाता है। तो हमारे आंख, कान, नाक, मुंह, जबान और हमारी फीलिंग यानी जिसमें हमारा, इससे ही हमारे एक्शन में, कर्म इंद्रियों में हमारा स्वरूप जो है, त्वचा से स्वरूप नजर आता है, काला है कि गोरा है कि सॉफ्ट है कि कैसा है। ये त्वचा यानी बाहर का जो ड्रेस है ना, उसका भी रूप। इसलिए फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ठंड लगती है, ठंड पहले इधर लगी, पसीना आया, गर्मी लगी, चेहरे पर आई ना पसीना। तो त्वचा को नाक को सूंघने की, अब लोभ की वृत्ति, भूख तो नहीं थी परंतु घर में आए पकोड़े बन रहे हैं, भूख तो बिल्कुल नहीं है, समोसा चलो कोई नहीं, मैं एक तो ही खाऊंगी, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तो खाने बैठे सारी प्लेट खा गए ये भी नहीं देखा दूसरे को खाना है। तो ये जो है ना, इसमें ऑटोमेटिकली विकार समाए हुए हैं पांचों तत्वों में और देह भान में, जो बाबा कहते हैं देह भान आता है तो दुख का दरवाजा खुल जाता है, खुशी के बदले दुख का द्वार खुलता है। तो पांचों विकार इंद्रियों से प्रत्यक्ष होते हैं। हम राजा नहीं बनते, हम गुलाम बन जाते हैं, स्वाद के गुलाम बन गए। आकर्षण दूसरी चीज इंद्रियों के आकर्षण में आ गए, किसी के शरीर के आकर्षण में आ गए, वस्तु के आकर्षण में आ गए, वैभव के अधीन हो गए। तो क्या हुआ, बजाय राजा बनने के गुलाम बन गए अथवा दासी बन गए, मंत्रा बन गए। अब न केवल कर्म इंद्रियों को सुधारना है, परंतु तीनों रानियों को भी सुधारना है। और वो तीन है रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। पर कैकई कैकई क्यों बनी, क्योंकि मन ने, ये क्या है, मन की इच्छाएं, मन के क्वेश्चन, मन के संकल्प, क्यों किया, कैसे किया, किसने किया, कब ने किया, क्यों, क्या, कई, किसने कई, वो क्या कई और मंत्रा ने मिलके वो राम राज जो मिलने वाला था, दशरथ बेचारा अधीन हो गया। राज 15-14 साल दूर हो गया, मिलना तो था कल, कितने साल के बाद मिला, 14 साल का वनवास हो गया। इस बीच में कष्ट कितने आए, युद्ध कितना करना पड़ा, सीता चोरी हो गई, भटकना कितना पड़ा, रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। तो राजा बनना है तो मन को शुद्ध करना है, बुद्धि को कुशल योगी बना करके दिव्य बुद्धि बनानी है और संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है। तो संस्कार सुमित्रा है, बुद्धि को शल्या है, और जो है जो मन कैकई ना बनकर, मंत्रा ना बन करके, ड्रामा को साक्षी हो करके, मन शीतल शांत शुद्ध ड्रामा में मस्त हर साक्षियों के देखने लगे, मन मना भाव हो गया, मंत्रा नहीं रहा, मन मना भाव का मंत्र पक्का हो गया, क्यों क्या कई खत्म हो गई। इसलिए भट्टी का लक्ष्य यही है कि मुझे ना किसी चीज के अधीन होने, ना कर्म इंद्रों के वश होने, और न किसी के प्रभाव में आना है, ये छोड़ के यहां जाना है, स्वच्छ बन के जाना है, शुद्ध बन के जाना है, पवित्र बन के जाना है, पावन बन के जाना है। तो पहले है स्वच्छता, फिर है शुद्धि, फिर है पवित्रता। खाली काम विकार की बात नहीं, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, पवित्रता ही सत्यता है, पवित्रता ही सभ्यता है, पवित्रता ही सम्मान है, पवित्रता ही सुंदरता है, पवित्रता ही दिव्यता है, जो हमको देवता बनाती है। जो दूसरों को दुआएं देने के लायक मन बन जावे, बद्दुआ न देवे, दुआएं देवे, वरदान देवे, क्षमा करे, सहयोग देवे, तो आत्मा जितनी जितनी पवित्र बनती जाती है, वो अपने आप ही माननीय और सम्माननीय बनती है। सबके हृदय में सम्मान होता है तो वो माननीय महान आत्मा बन जाती है, देती रहती है फिर वो कर्म को, वो पवित्रता कर्म में अनेकों को व्यवहार से, विचार से, संग से, सहयोग से, भावना से, ज्ञान की दृष्टि से, तो हर कर्म इंद्री से वो जो पवित्रता, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, वरदानी वाणी और ऐसा संग जो दूसरे की तपत बुझा देवे, तो देवता बन जाती है, पूजनीय बन जाती है, पावन बन जाती है। वो पतितपना टच नहीं करता किसी का, पतितों को भी पावन करने वाली बन जाती है। तो यह है भट्टी का लक्ष्य। परंतु इसके साथ साथ ये भट्टी है तो ओरिजिनल भट्टी, बाबा ने कहा पांडवों का किला है, तो ये एक एक ईंट पक्की मजबूत बननी है। अगर एक ईंट भी कच्ची रह गई तो फिर इसलिए ये कुम्भार की भट्टी भी है। एक एक बर्तन को, मटके को, मटकी को ऐसा शेप देता है जो उसी किसका चीज का असर ना पड़े। समझो मानो आप देखो आपके पास मिट्टी का कसौरा है, पुराना जमाना तो नहीं, पर अभी जब ट्रेन में आते थे पहले पहले जो बाबा के बच्चे आते होंगे, वो कप प्लास्टिक के गिलास में दूध चाय नहीं हो मिलती थी, कसौरा होता था मिट्टी का, तो चाय में से चाय पीते मिट्टी की सुगंध आती थी। वो चाय कसौरा भी मिट्टी चाय पीता रहता था, राइट। अब वही कप जो है उसको शेप दे करके, अगर वो कच्चा है, मिट्टी है, उस पर कुछ भी हाथ लगा, मिट्टी का शेप तो बन गया, हमारी शेप तो है, हम ड्रेस भी पहन लिए, क्लास भी पहन लिए है, तिलक भी लगा लिया है, शेप तो ब्रह्मा कुमारी की सिखाए, शक्ल तो ब्रह्मा कुमारी की, ड्रेस भी शर्मा कुमारी की बन गई, पर वो पक्की है, कच्ची तो नहीं है। कच्ची हूं ना तो मेरे को किसी का असर जल्दी होगा। कच्ची चीज पर मिट्टी पक्की नहीं है तो हाथ में पकड़ो तो उसकी शेप ही बदली हो जाएगी, कोई चीज से लग गया तो टेढ़ी हो जाएगी, डी शेप हो जाएगी। तो जो हमारी दिव्यता बन रही थी ना, किसी का भी असर पड़ा कच्चे पर जल्दी असर पड़ जाएगा। तो पक्का होने के लिए आया है, इसलिए कुम्हार की भट्टी है। न केवल कुम्हार की भट्टी है परंतु उसके साथ साथ ये पॉलिश करने की भी भट्टी है। वही कप है, अगर पॉलिश हो गया, अब उसमें एक क्रॉकरी बन गई समझो आपके घर की, अब उसमें दूध डालो, पानी डालो, जूस डालो, निकालो, लगेगा नहीं उसमें, उसमें से खुशबू मिट्टी की नहीं आएगी, और वो लगेगा भी नहीं, ऑटोमेटिकली क्लीन हो गया, पक गया है तो किसी चीज को तले से लगता नहीं, यानी प्रूफ हो जाता है। जैसे जैसे वो आजकल तब जो बनाते हैं ना, क्या डोसा बनाते हैं, है ना, अगर उसको ठीक पॉलिश नहीं किया होता है तो माताओं के तवे पर वो डोसा चिपक जाता है, और वो जब वो बराबर उसको पॉलिश हो गई, आप अपने डालो निकलो, वो इतनी डिटैच हो गई, वो खाती नहीं है, पर वो जो पॉलिश नहीं की हुई थी तो खराब भी कर देती है, आधा खाने लायक भी नहीं रहने देती, एक दो तो खराब होता है जरूर, पीछे के तो पहला पहला बन है ना, प्रूफ नहीं है। तो पॉलिश करने आए हैं, जो हमारे पर कोई भी चीज डाले हम इतने पक्के रहे, जो हम डिटैच होके रहे, तो डिटैच होने की, बाबा से अटैच होवे, दुनिया से डिटैच हो जाए, न्यारे भी बन जावे, प्यारे भी बन जावे। जितने जितने बाबा के प्यारे, तो वो ज्ञान और योग और गुणों की पॉलिश हो गई। वो पॉलिश हो गई तो चमकने लगेंगे। वो जो उसका पॉलिश नहीं किया होता ना, चमकता नहीं है, और पॉलिश की हुई चीज चमकती है। वो गुणों की पॉलिश, दिव्य गुणों की, बाबा पॉलिश करता है, दिव्य गुण भरता है। तो ज्ञान भी दिया, योग भी सिखाया, पक्का किया। ईंटे एक एक ईंटे एक एक बाबा का बर्तन जो दूसरी आत्मा को अमृत पिलाने वाला है, एक एक कलश इतना सुंदर शुद्ध हो जावे, उसमें कुछ किचरा ना रहे। तो ये भी मटका रोज धो लेना है, देखना ऐसा नहीं कि कोई इसमें थोड़ा बहुत मच्छी मच्छर मक्खी आके चली जावे। इसलिए जाली का वो रख रखते हैं, जग में भी पानी रखते हैं ना, तो थोड़ा जाली का वो रख देते हैं। तो अपने आप को देखना है, मैं ईश्वरीय वाइब्रेशन से ढकी हुई हूँ, पॉलिश की हुई हूँ, सेफ हूँ। अपने आप को आप पे पक्का करना है, पर पक्का करने की भट्टी में फिर अग्नि चाहिए। ईंटों को पक्का करना है ना, चमकाना है तो गुण चाहिए, संग चाहिए, पकना है तो अग्नि चाहिए। तो लगन की अग्नि की भट्टी है ये, क्योंकि यज्ञ को मजबूत बनाना है, बाबा को यज्ञ बड़ा पावरफुल बनाना है। तो अगर एक ईंट भी कमजोर हुई तो किला कमजोर हो जाएगा पांडवों का। इसलिए हम यज्ञ के रक्षक हैं, और हमको इसीलिए संगठन की भट्टी मिलती है। क्यों भट्टी क्यों कही? अगर समझो चार लकड़ियां एक चूल्हे में जल रही है, या ऐसे ही जल रही है खुले में, तो आग थोड़ी गर्म हुई, अगर थोड़ा वातावरण बदला, चार और डाल दी, चार टुकड़े और डाल दिए, डालते जाओ सारा कमरा गर्म हो जाएगा, ठंडक दूर हो जाएगी। अब उस ठंडे उस भट्टी में जिसमें 50 लकड़ियां जल रही हैं, 100 लकड़ियां जल रही हैं, 150 जल रही है, 2-3 कच्चे भी आ गए, मेरे को भी दीदी भट्टी में जाने दो ना, चलो तुम भी चले जाओ, वो भी पक जाएगा। है बराबर ऐसी बात? वो गिल्ली लकड़ी को भी आग लग जाएगी। भट्टी इसका नाम है। क्या कोई कच्चा भी आया है, अभी गिल्ला भी आया है, अभी मजबूत नहीं भी है, पर बाबा का संग और ईश्वरीय परिवार और परमात्म संबंध का रंग लगा तो आत्मा होली बन गई, योगी बन गई, होली हंस बन गई, गुणग्राही बन गई। तो लक्षण से पता चलता है, हाँ भट्टी करके आए हैं। तो लक्ष्य हो अपने अंदर पूरा परिवर्तन, और पिछला छिप जाए, नहीं क्या तन खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, लकड़ी जल के राख हो जाए। भाई राख भी ना रहे, वो भी ज्ञान गंगा में बह जाए, नक्की लेक नहीं, लक्की लेक में, समझा? तो लक्की लेक पर रोज भले स्नान करो, मानसरोवर में स्नान करो। तो बाबा ने कहा मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं, परियां बन जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं, स्वच्छ बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य से देवता बनना है, सुंदर बनना है, स्वच्छ बनना है, पावन बन करके, फिर वो पावनता के वाइब्रेशन, पवित्रता के वाइब्रेशंस हमारी दृष्टि से, हमारी वृत्ति से, तो हमारे संकल्प में इतनी दृढ़ता हो, हमारे संस्कार में इतनी परिपक्वता हो, हमारे वाइब्रेशंस, हमारे जो हमारा श्वास चलता है उसमें इतनी शुद्धि हो, जो जो भी हमारे आसपास आवे उसको वाइब्रेशंस आए। जब जैसे बाबा के पास आते, कमरे में जाते ही वाइब्रेशन महसूस होते हैं, पांडव भवन में घुसते ही वाइब्रेशन महसूस होते हैं। तो वाइब्रेशन भी दिव्य बन जावे, वाणी भी शुद्ध बन जावे, दृष्टि भी दिव्य बन जावे, मधुरता का वरदान मिल जाए और कर्मों में श्रेष्ठता आ जाए, तो ऐसे सर्व गुण संपन्न, उस गुण को फिर यूज करने की कला अहम ना आवे। हाँ, मैं तो भट्टी करके आया, अभी तो मैं पक्का हो गया, निर्माणता भी साथ साथ रहे, पक्का ब्रह के दिखावे, टेस्ट बहुत आएंगे। पक्के होके जा रहे हो तो ठोक के देखेंगे ना, बराबर पक्के होके आए हैं। अहम भी ना आवे, और जैसे आज बाबा ने कहा वहम भी ना आवे, पर रहम आवे अपने पर भी और रहम आवे दूसरे पर भी, तो फिर हम आत्माएं अपना भी कल्याण करें। तो यहाँ कल्याणकारी बाबा के बच्चे स्वकल्याण सेवा में अपने कल्याण के साथ साथ साथियों का कल्याण, सेंटर का भला, साथियों का भला, अपने कुल का भला, अपने परिवार का भला, अपने शहर का भला, अपने जोन का भला, क्या संसार का भला करने के लिए बाबा मेरे को लायक बनाए। तो यहाँ से लाइट हाउस और माइट हाउस बनने के लिए इतना पावरफुल और शुद्ध बन करके पवित्र सच्चा सोना बन के जाना है, तो आखिरी भट्टी है सुनार की भट्टी। ब्रह्मा बाबा ज्वेलर थे, तो आप सभी को सुनार की भट्टी क्या होती है, वो सोने के अंदर के खोट को निकाल देती, खोट दिखाई बाहर तो पड़ नहीं रहा, सोना ही दिखाई पड़ रहा है। तो बाबा को पता है अंदर खोट कौन सा है, वो अंदर का खोट तपस्या के बल से, त्याग के बल से, त्याग तपस्या सेवा में निर्माणता समाई हुई हो, महानता समाई हुई हो, दिव्यता समाई हुई हो, तो ऐसा सच्चा सोना बन जाए तो फिर हीरा लगेगा। सोने पर हीरा लगता है, हीरे को देख पत्थर पर हीरा नहीं लगता, प्लास्टिक पर हीरा नहीं लगता, चांदी पर भी शोभा नहीं देता, वो तो खाली मोती बनावटी मोती लगते हैं प्लास्टिक पर। तो सच्चा सोना बने तो बाबा का हीरा, और हीरो बन जाएं और जीरो बन जाए, निर्विकारी बन के, निराकारी बन के, बाबा वाला लक्ष्य निरंकारी बन के, ये भट्टी ऐसा चमत्कार करे तो सब कहें अरे तो फरिश्ते बन के आए हैं, जो कि बाबा के मधुबन से होके आए हैं। मानसरोवर ने बाबा ज्ञान सरोवर, ये पवित्रता का सरोवर है, इसमें आप आए हैं तो फरिश्ते बन के जाए, परियां बन करके जाए, इतने पवित्र बन के जाए, जो देवता की डिग्री तो आप पे ही मिलनी है, तो ऐसी भट्टी करनी है। समय कहता है अब मैं बंद करूं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कुछ पूछना हो तो पूछे,
किसी को कुछ पूछना है तो जी।
ओम शांति दीदी जी, आपने एक बार पूछा था बाबा से कि बाबा मैं तो नई नई ज्ञान में आई हूँ, इतनी देर के बाद आई हूँ, मेरी उन्नति कैसे होगी, उसका मुझे कुछ आप रास्ता बताइए। तो बाबा ने आपको जो बताया वो आप हम सब के साथ शेयर कीजिए, आप जब दिल्ली में थे।
मैं दिल्ली में भी थी तो मम्मा से भी पूछा था, बाबा से भी पूछा था, दोनों से पूछा था। मम्मा से मैंने पूछा, मैंने कहा मामा मैं देखती हूँ बाकी तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, मैं इतनी आगे नहीं बढ़ी हूँ, इन्होंने तो बहुत उन्नति की है, मैंने उन्नति नहीं की है। मैंने कहा मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मामा ने कहा कोई परिवर्तन नहीं आया? मैंने कहा नहीं। मामा ने मेरे से सिंपल शब्द पूछे, अच्छा अभी तुमको तुम्हारी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स बुलाए, बड़ी अच्छी फ्रेंड हो आप, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखा है, अभी भी आप ब्रह्मा कुमारी बन गई हो पर वो आपको अपना ऊंचा मान देती है, आपको अगर पार्टी पर बुलाए तो आप जाएंगी? मैंने कहा नहीं जो। कहा क्यों? मैंने कहा मामा मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, और ना मुझे मेरा इंटरेस्ट ही चेंज हो गया है, और पार्टी में जाओ ये वो ड्रेस पहनी है इसने, ये ड्रेस पहनी है इसने, फालतू बातें सुनने का मेरी इच्छा भी नहीं है, ना मेरे को नए फैशन की जरूरत है, मेरे को जरूरत भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, संकल्प भी नहीं आएगा कि मैं जाऊं। कहा तुमने कहा मैं बदली नहीं हूं, तुम्हारा बदली में पे तुम्हारा यानी तुम्हारी चॉइस बदली, तुम्हारे संकल्प की सोचने की शक्ति बदली, तुम्हारी इच्छा चेंज हुई, तो जो परिवर्तन। फिर दूसरा और भी दो तीन क्वेश्चन पूछे थे, तो मम्मा ने कहा क्या होता है जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, या तो कंपटीशन होता है या कंपैरिजन होता है या फिर थोड़ी ईर्ष्या जागृत होती है, मायूसी आती है, परंतु पहले अपने आप को, अपने को देखो कि आपने शुरू काल से किया, स्वमान की सीट पर बाबा बिठाता है। परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं की पहचान देता है, और स्वयं को तुमने ये मानना शुरू कर दिया कि मैं आत्मा हूं। मैंने कहा हाँ मम्मा ये तो पक्का निश्चय, मैं आत्मा मानती हूँ। मैंने कहा क्या मानती, क्या मैं योग भी करती हूँ तो चलते फिरते यही बात अंदर सोचती रहती हूँ, मेरे हर श्वास में ये नेचुरल मम्मा हो गया जो मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मम्मा ये मेरे श्वास में, मैं जब से बाबा की बनी हूँ ये तो मेरा स्वाभाविक हो गया है, और मैं जब योग में बैठती हूँ तो ये तो बराबर नहीं, पर ये तो मेरा भी नेचुरल हो गया ना। मम्मा ने कहा ये परिवर्तन हुआ ना, यानी तुमको अब ये स्मृति तो आई ना, स्मृति स्वरूप के साथ साथ ये जो बाबा ने लक्ष्य दिया उस लक्ष्य को सामने रख करके उसका स्वरूप बन रही हो ना। तो फिर मामा ने कहा कि तुम दो चार शब्द, दो तीन क्वेश्चन और भी पूछे थे, तो मामा ने कहा तुम अपनी खुशी को खत्म नहीं होने दो, तुम खुश कहते मैं खुश नहीं हूं, दूसरों को देखते हो, हर एक अपने अपने सब्जेक्ट में, कोई इंग्लिश में तेज है, कोई ज्योग्राफी में होशियार है, कोई मैथमेटिक्स में होशियार है, तुमने ज्ञान और योग का सब्जेक्ट लिया है ना, तुम इस पर ध्यान दो, ये सब्जेक्ट तुम्हारा है तो जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दो ना। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की बच्ची संतान हूँ, ये पहला सबक है, इस पर पूरा ध्यान रखना शुरू किया है ना, चेंज आया ना, पहले तो देह भान ज्यादा रहता था ना पहले, और फिर वो स्वचिंतन से। मैंने कहा मामा एक बात है, खुशी नेचुरल रहती है, अपसेट नहीं होती हूँ कोई बात होती, का चेंज आया ना गुण ग्रहण करने की। और ये भी बताया मैंने कहा मामा अभी कोई किसी में कोई बात होती है ना तो मुझे लगता है इन बेचारे का संस्कार है, कब चेंज हुआ गुण दिखाई पड़ने लग गए ना, दृष्टि बदली, संकल्प बदली हुआ, भावना बदली हुई, दृष्टि बदली हुई, उसको पक्का रखो, उसमें फिर कमी नहीं आने दो, कमजोर नहीं बनो। तो अपने आप को देखो कि तुम थी क्या और अब क्या क्या परिवर्तन आया, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है कि अहंकार ना आ जावे, मैं तो बहुत परिवर्तन हो गई हूं, खुश भले रहे, कंपेयर किसी से नहीं करना, क्यों कि तुम्हारा लक्ष्य अगर ऊंचा बनने का है तो हमेशा समझो कहां से शुरू किया है और मुझे कहां पहुंचना है। तो ये ब्राह्मण जीवन पांच मंजिली मंजिल है। तो मानो तुमने शुरू से शुरू किया पांचों विकारों को जीतने, ऊंची चोटी पर चढ़ने, तो अभी मानो तुमने तीन स्टोरी चढ़ ली, तो नीचे से देखो तो पता चलेगा अरे इतनी ऊंची आ गई हूं, पर अभी दो मंजिल और चढ़नी है, कभी भी क्या पैर खिसक न जावे। तो कहां से चली हूं वो परिवर्तन आया, उसमें लापरवाह नहीं बनना है, जो परिवर्तन किया है वो पक्का करना है, जो नियम बनाया है क्लास में बैठ जाना है जरूर, मुरली जरूर पढ़नी है, योग जरूर करना है, चार्ट पर लिखने का अगर नहीं है तो मैं समझ सकती हूँ ये छूट जाता है, सोने से पहले भले लेटे लेटे भी 10 मिनट 15 मिनट अपने आप से अंदर चेक करो, या कुछ पढ़ के सो, कुछ सुन के सो, तो तुम्हारा सोच स्वप्न में भी नींद में भी वो संकल्प पक्का रहेगा। ये जो नींद आ जाती है, गहरी नींद में सो जाते हैं, वो गहरी नींद नहीं आएगी, मीठी नींद आएगी और थोड़ी नींद में संतुष्टि हो जाएगी, सुस्ती की आदत खत्म हो जाएगी। बहुत फायदे हैं इसके, अपनी चेकिंग करके सारे दिन का समाचार देखे तो। ये जो रोज चार्ट बाबा कहते हैं तो लिख के ना भी बैठो, कोई किस लिए नहीं लिखते, मेरी कॉपी कोई पढ़ लेगा तो मेरा और कहाँ तक कॉपी संभाल के रखेगी। ये थोड़ी माया भी होती है कि मैंने चार्ट लिखा मैं रखा, मेरी कॉपी कोई दूसरा पढ़ेगा तो मेरा शिष्य दूसरे को मिलेगा। तो अपना चेकिंग करके अपना मास्टर तो बनो, अंतर्मुखी हो करके। तो अपना परिवर्तन अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। बाबा का साथ और अपने पर अटेंशन, इससे परिवर्तन होता है। किसी दूसरे को से प्रेरणा जरूर लेनी है पर पुरुषार्थ अपना है। तो फिर ये देखो कि चली कहां से हो और पहुंचना कहां है, बीच में खड़ी हो कभी भी गिर सकती हो, बिल्डिंग हिल सकती है, इसलिए ये मम्मा ने बताया। फिर भी एक बारी बाबा से पूछा, बाबा ये जो प्रोग्रेस मम्मा ने बताई पर बीच बीच में ऊंचाई निचाई थोड़ा थोड़ा डामा डोल होते हैं, वो अचल डोल एकदम रहे, अवस्था अखंड खुशी वाली रहे, कोई प्रकार का कोई चेहरे पर चिंता रहे ही नहीं, लक्ष्य अच्छा रहे। तो बाबा ने कहा हाँ तो मैंने कहा बीच बीच में थोड़ी कहाँ जब सफलता नहीं होती है जो लक्ष्य रखते हैं तो थोड़ा मन उदास होता है, थोड़ा अपने आप में मायूसी आती है। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम ऊपर कैसे आई? मैं तो प्रश्न पूछा पर बाबा ने क्वेश्चन पूछा ऊपर कैसे आई हो बाबू में। उस समय बस आती थी या अगर समझो सामान है और चार पांच पैसेंजर हैं तो टैक्सी में आ जाते थे। टैक्सी आना शुरू हुआ था, नहीं तो शुरू में तो टैक्सी भी नहीं मिलती थी। हमको आए 67 साल हो गए हैं, 57 में बाबा के बच्चे बने। एक दिन भी ऐसा कभी नहीं हुआ जहां मुझे जिसमें मुझे संकल्प आया हो कि मैंने राइट रास्ता नहीं लिया। आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, खुशी खुशी है। भाग्य पर नशा है, नाज है मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, भगवान ने अपना बना लिया। तो अच्छा तो मैंने बताया पर थोड़ा डामाडोल बीच बीच में होता है, कोई बात होती है तो पूरी नहीं होती है तो अपने आप से लगता है कि मैं तो कुछ नहीं पुरुषार्थ किया, मैं तो जो ऊंची चल रही थी ना तो मैं तो तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर चली गई हूँ। मम्मा ने कहा था तीसरी मंजिल से पांचवी मंजिल पर जाना है पर मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं वो मंजिल से नीचे आ गई हूँ। मम्मा ने कहा बाबा ने कहा बच्ची तुम ऊपर कैसे आई हो? ट्रेन से आए थे दिल्ली से? मैंने कहा टैक्सी में आई। टैक्सी में आई? अच्छा तो टैक्सी वाले जब आया तो आपको ये माउंटेन का रास्ता कैसे लगा? मैंने कहा अच्छा लगा बाबा, बहुत घूम थे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे लगता था कि नीचे जा रही है फिर वो ऊपर जाता था। तो कहा तुमने टैक्सी वाले को? नहीं कहा, मुझे नीचे नहीं जाना है, ये तो सात घूम है ना रस्ते में चढ़ते हैं तो ऐसा भी नीचे जा रहा है फिर ऊपर हो जाता है फिर नीचे। तो मैंने कहा नहीं बाबा, टैक्सी कोई डायरेक्शन थोड़ा चेंज किया, वो ऊपर नीचे तो रोड होती थी ना, टैक्सी तो ऊपर ही आ रही थी ना, वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। जाने वाली टैक्सी अपने रास्ते से जा रही थी, नीचे आने वाली अपने रास्ते से जा रही थी। तो बाबा ने कहा यही तुमने जो डायरेक्शन लिया है परफेक्शन का डायरेक्शन लिया है, संपूर्णता का लक्ष्य लिया है, बाबा का बन करके रहने का लक्ष्य लिया है, ब्रह्मा कुमारी बनने का लक्ष्य लिया है, ऊंचा मैं बाबा को प्रसिद्ध करूं ये लक्ष्य लिया है, लक्ष्य को पक्का रखो। तो ऑटोमेटिकली भले नीचे ऊपर मोड़ आते हैं वो तो साइट सीन हो गए, तो ये ऊपर नीचे की बातों को साइट सीन देखोगी तो कभी भी अवस्था डामाडोल नहीं होगी, साइड सीन है साइड सीन है। तो बाबा ने ये उमंग उत्साह भरा अपना, तो अभी उत्साह नहीं छोड़ना है, निश्चय की कमी होती है तो भी थोड़ा डामाडोल होते हैं, स्वमान की कमी होती है तो भी डामाडोल होते हैं, ज्ञान की कमी है तो भी डामाडोल होते हैं, दूसरों को देखते हैं तो भी डामाडोल होते हैं, कंपेयर करते हैं तो भी डामाडोल होते हैं, कोई काम इमीडिएटली सिद्ध नहीं हुआ चिंता लग जाती है दूसरे क्या सोचेंगे दूसरे क्या सोचेंगे। तो बाबा तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं, तुम दूसरे के सोच रहे हो। तो इसीलिए बाबा पर निश्चय, अपने स्वमान पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, लक्ष्य पर निश्चय, पर लक्षण अपने चेक करते रहना है कि सर्व गुणों की मूर्ति बन रहे हैं। तो वो कितने परसेंटेज बढ़ रहे हैं, यानी लक्षण हैं पर उसकी परसेंटेज बढ़ती जाती है। जैसे विकार कम होते जाते हैं ना, क्रोध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो विकार है, परंतु जो गुण है वो बहुत सूक्ष्म चीज है। अवगुण कितने गुण में बदलते जा रहे हैं, सर्व गुण संपन्न बनते जा रहे हैं, कोई गुण की कमी तो नहीं रही। और गुण लग गया तो गुण को ठीक रखा या गुण को गुण लग गया है? ये चेक करो, गुण को गुण ना लगे, मतलब जैसे गेहूं है, गुण को गेहूं को अगर गुण लग गया, गुण समझते हो क्या वो कीड़ा लग जाता है तो फिर वो उगता नहीं है, बढ़ता नहीं है। तो गुण है और थोड़ा अहम आ गया, कंपेयर करने लगे अपने गुण से दूसरे के, अवगुण के साथ कीड़ा लग जाएगा, फिर उगेगा नहीं, फिर वो वृक्ष नहीं बनेगा, वो नया फल नहीं देगा, खुशी नहीं देगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए गुणों की भी चेकिंग हो, पुरुषार्थ पर भी अटेंशन हो। और ऊंचाई निचाई आएगी, ये साइड सीन है, इसमें कभी घबराना नहीं है, बढ़ते चले जाना। लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य से नीचे नहीं आना है। टैक्सी तुमने कहा ना कि एक ही डायरेक्शन पर चलती रही, तो बाबा के डायरेक्शन पर चलते रहना। जैसे टैक्सी उसी डायरेक्शन पर चलती रही तो तुम शिव बाबा की जो डायरेक्शन मिली है ना, बस उस पर चलते रहना। कोई कुछ भी बोले वो साइड सीन है। बाबा का डायरेक्शन लेकर के चलोगी परफेक्शन होगी, बाबा का डायरेक्शन मत देख करके दूसरे की डायरेक्शन पर चली, मन मत हो गया, पर मत हो गया, वो दुख देगी, श्रीमत दुख देगी। फिर बहाना भी नहीं, लक्ष्य तो अच्छा था परंतु परंतु परंतु, वो पर कट जाएंगे उड़ने के, समझा? परंतु परंतु वाले कहने के पर कट जाते हैं, वो परिस्थिति नहीं बनता, परोपकार नहीं कर सकता। इसीलिए हम विश्व कल्याणकारी हैं, परोपकारी हैं, वो धार मुहूर्त है, आधार मुहूर्त है। लक्ष्य भी सामने रखो और लक्षणों को भी कायम रखो। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने लक्ष्य उद्देश्य के साथ साथ अपने आप को कैसे महान बनाए वो बहुत अच्छा मम्मा पापा का एग्जाम्पल देके, अपने जीवन का एग्जाम्पल दे करके बताया। तो दिल से दीदी का दो हाथ की ताली से हम धन्यवाद करें। हम 5 मिनट पापा को याद करेंगे।
तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए,
तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए,
मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए,
मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए,
फिर भी चुका न पाएंगे, बलिहार बाबा हम तुम पर बलिहार, हो बाबा, हो जब देखूं एक तुमको ही देखूं,
आंखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं,
कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं,
कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं,
तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं दिल बलिहार, तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं तुम पे ही दिल बलिहार, हो कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा तुम हम पर बलिहार।